राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम को राधा कुंड गिरिगोधन की, श्री श्री राधा बिहारी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा, एक बार बोलिए हरे कृष्णा, जोर से बोलिए हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंदिर में आने के लिए, दर्शन करने के लिए। मंदिर में सत्संग हो रहा है तो कृपा करके बैठिए, बाता लोग आप बैठना है तो बैठे यहाँ पर, नहीं तो अंदर जाके दर्शन कीजिए, वहां से हटिए, यहाँ से अंदर जाइए सब लोग, और ध्यान से जो बैठे हैं उनको सुनना दीजिए। आप लोग बातें मत कीजिए मंदिर में आने के बाद, संसारी बातें नहीं करनी है, भगवान के बारे में सुनना है। और यहाँ इसीलिए प्रभुपाद जी ने सुबह के समय भागवत का कक्ष रखा है और शाम के समय गीता का कक्ष रखा है, इसे शांति से सुनना चाहिए। भगवान के बारे में सुने बिना भगवान की मूर्ति के बारे में कुछ भी आपको खबर नहीं पड़ेगी, इसलिए कृपा करके सुनिए। हरे कृष्णा। हाँ मेरे भाई उसको बोला, उनको को बोला, माइक दो उनको पकड़ो, और इंग्लिश इंग्लिश कर दे, इंग्लिश से पढ़ेगा, पढ़ो श्लोक पढ़ो।
हरे कृष्ण, दूसरा अध्याय 47 श्लोक,
सब लोग बोलिए। ये श्लोक जो है बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, हमारे हर एक नेता लोग इस श्लोक को जानते हैं और बोलते हैं, लेकिन उसके ऊपर मनन नहीं करते हैं। तो आज कैसे मनन करना चाहिए उसके बारे में इस श्लोक का समझाया जाएगा। ये प्रसिद्ध श्लोक है, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा भारत में जो सामान्य सामान्य आदमी ये श्लोक को पाठ नहीं करता होगा। बोलिए,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
मा फलेषु कदाचन,
मा कर्म फल हेतुर्भु,
मा कर्म फल हेतुर्भु,
मा ते संगोस्त कर्मणि,
मा ते संगोस्तु कर्मणि,
कर्मण्येवाधिकारस्ते,
कर्मण्येवाधिकारस्ते,
मा फलेषु कदाचन,
मा फलेषु कदाचन,
मा कर्म फल हेतुर्भु,
मा कर्म फल हेतुर्भु,
माते संगोस्त कर्मणि,
माते संगच कर्मणि। और एक बार,
कर्मण्येवाधिकारस्ते,
कर्मण्येवाधिकारस्ते,
मा फलेषु कदाचन,
मा फलेषु कदाचन,
मा कर्म फल हेतुर्भु,
मा कर्म फल हेतुर्भु,
माते संगोस्त कर्मणि,
माते संगस्तु कर्मणि।
कर्मण्येवाधिकारस्ते,
कर्मण्येवाधिकारस्ते, सब लोग बोलिए,
फलेषु कदाचन,
मा फलेषु कदाचन,
कर्म फल हेतुर्भुर्वा,
मा कर्म फल हेतुर्भुर्वा, मा ते संगस्तु कर्मणि, सब लोग बोलिए बोलिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल दोस्तो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भु, मादे संगस्तु कर्मणि। बोलिए सब लोग, बोलो बोलो बोलो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन, हाँ चलो बोलो, कर्म हेतुर्भु, मादे संगस्तु कर्मणि। और बोलो बाहर के आदमी, बोलिए बोलिए प्रभु जी, बोलो आप लोग बोले कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फले सुखदा जना मां कर्म फल तुभु मां दे संगस्तु कर्मणि। और कोई बोलिए, माता जी बोलिए, आप लोग बोलिए बोलिए, श्लोक बोलिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां कर्म सुखदा जना कर्म फल हेतु संगस्तु कर्मणि। बस हो गया शब्दार्थ।
शब्दार्थ दोहराइए। कर्मणि,
कर्मणि
कर्म करने में,
कर्म करने में
एव
एव
निश्चय ही,
निश्चय ही
अधिकारः,
अधिकारः
अधिकार,
अधिकार
ते
ते
तुम्हारा,
तुम्हारा
माँ
माँ
कभी नहीं,
कभी नहीं
फलेषु,
फलेषु
कर्म फलों में,
कर्म फलों में
कदाचन,
कदाचन
कदापि,
कदापि
माँ
माँ
कभी नहीं,
कभी नहीं
कर्म फल,
कर्म फल
कर्म का फल,
कर्म का फल
हेतु
कारण
भू हो माँ कभी नहीं ते तुम्हारी,
तुम्हारी
संगह
आसक्ति
अस्तु हो अकर्मणि कर्म न करने में। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिविदान स्वयं महाराज श्रील प्रभुपाद के द्वारा। स्वयं श्रील प्रभुपाद की जो अनुवाद इस प्रकार है, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों के कारण मानो, नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो। दोहराइए, तुम्हें
तुम्हें
अपना कर्म,
अपना कर्म
या कर्तव्य,
कर्तव्य
करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के,
कर्म के फलों के
तुम अधिकारी नहीं हो,
तुम अधिकारी नहीं हो।
तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो,
कारण मानो
नहीं,
नहीं
कर्म न करने में,
कर्म न करने में
कभी आसक्त हो,
कभी आसक्त हो।
तात्पर्य यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं, कर्म स्वधर्म विकर्म तथा अकर्म। कर्म या स्वधर्म वे कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म के कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तीन उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपत्कालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्वगुण में रहकर किए जाते हैं। फलयुक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाला है। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलाशक्ति रहित होकर कर्म या स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वो बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिम्रंदस ज्ञानंजल शिलकया चक्षुर मिलितम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति सपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापद कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सहगणं रघुनाथयुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान स्वगलित विश्वीकृत चरित। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणम। वंचा कल्पतरु बेचा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। पीछे सुनाई पड़ रहा है प्रॉपर? आवाज आ रहा है? तो जो श्लोक है भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है। हम लोग गीता को सुनते सुनते यहाँ पर आए हैं और कर्म के विषय में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं इसकी वजह पहले समझेंगे, क्योंकि हम सुनते आए हैं कि अर्जुन और कौरव के पांडवों के और कौरवों के बीच में जो युद्ध होने वाला था, उस युद्ध के कारण के जमीन है, धन संपत्ति है, इसके लिए लोग लड़ते हैं और एक राजा लोग भी इसलिए लड़े थे। लेकिन भगवान ने इसके अंदर बड़ा सहयोग किया है। जीव मात्र के लिए कल्याण के लिए भागवत गीता का जो प्रवचन है उन्होंने किया गीता में। कभी कभी लोग अपने घर में भगवान कृष्ण का रथ के साथ जो पिक्चर होता है या भागवत गीता होती है या महाभारत होता है तो लोग कहते हैं कि ये घर में नहीं रखना चाहिए। वो मूर्ख लोग कहते हैं घर में रखना चाहिए कि झगड़ा हो जाता है घर में, इसी प्रकार से। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कैसी शांति होगी यह बताइए कि दोनों सैन्य बीच के बीच में यह गीता का पाठ पढ़ाया जा रहा है बहुत कम समय के लिए, एक हफ्ता दो हफ्ता के लिए नहीं बताया गया ये गीता, बहुत कम समय के लिए ये गीता का पाठ किया है। और उसको पाने से ही सुनने से ही लोगों को शांति प्राप्त हो जाती है। लेकिन कुछ मूर्ख है वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये गीता घर में नहीं रखनी चाहिए या भगवान का पिक्चर घर में नहीं रखना चाहिए, ये सब कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों को गीता को समझना चाहिए। अनेक अनेक गीता है लेकिन जिस मंदिर में आप बैठे हैं वो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी हुई गीता है। वो कहते हैं यथान रूप एज इट इज जसी आहे तसी। ये जो गीता है ये भगवान का संदेश ये समस्त जीवों को दिया गया है और इसमें कुछ जोड़ना या खोड़ने की बात ही यही नहीं है। इसीलिए ये गीता पढ़ के लाखों लोग भक्त बने हुए हैं, लाखों लोग भक्त बन के अपने जीवन काल में कृष्ण भावना को अपनाए हुए है और आनंद ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसका आनंद ले और इसी प्रकार से गीता को पढ़े। गीता को पढ़ने के लिए अर्जुन के पद चिन्ह का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त है। इसलिए भगवान ने कहा था भक्तासी में सका चेत रहस्य इति उत्तमम। ये जो रहस्यमय ज्ञान है ये मैं अर्जुन तुमको दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। और तो भक्त होने के नाते क्या होता है, भक्त होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, इस बात को जानना है हमको। भक्त होने के लिए हम लोगों को तत्पर गुरु परंपरा से आना चाहिए, साथ साथ आचार्य के मुकारविंद से। यहाँ पर आचार्य का वर्णन किया कि आचार्य के मुखारविंद से सुनना चाहिए। ये गीता का ज्ञान जो है आचार्य के मुखारविंद से सुनना चाहिए, तब जाके उस ज्ञान को हम जाहिर कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। क्योंकि भागवत गीता जो है वो सामान्य सामान्य संस्कृत श्लोक में बताई गई है, उसका अनुवाद किया हुआ है काल परिस्थिति और समय के आधार पर। उससे पहले किन्हीं ने बहुत सारी किताबों का अनुवाद किया होगा वो शायद हमको नहीं समझेगी, लेकिन प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया हुआ है ये बात बढ़िया ही समझ में आता है, क्योंकि प्रभुपाद ने हर एक शब्द का अर्थ भी लिखा है साथ साथ तात्पर्य भी लिखा है, उसका अनुवाद भी किया हुआ है, इसीलिए हम इसको समझ सकते हैं। तो गीता को ये जो श्लोक है ये बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मणि वाधिकारस्ते। हम सभी लोग धर्मार्थ काम और मोक्ष जो कर्म है ये करते हैं, सामान्यतः करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि जो कर्म जो है ये बड़ा ही बारीक चीज़ है, बहुत बारीकी से सोचना चाहिए इसके बारे में, मोटे मोटे से सोचने नहीं चलेगा, वो आपको बंधन में बांध देगा। कैसा ही कर्म क्यों ना हो, विधि सतोगुण कर्म क्यों ना हो, वो आपको बंधन में बांध देगा। प्रभुपाद समझाते हैं, कोई व्यक्ति कहे कि मेरे हाथ जो है सोने के जंजीर से बंधे हुए हैं, कोई व्यक्ति कहे कि मेरा हाथ चांदी के जंजीर से बंधा हुआ है, कोई कहे लोहे के जंजीर से बंधा हुआ है, लेकिन हाथ बंद होने के बाद हम खोल नहीं सकते हैं, उसको खोलने के लिए दूसरा आदमी जरूर आवश्यकता पड़ती है, तब ये हाथ खुलेंगे। तो सत्वगुण का ज्ञान भी हमें इस संसार में बंधन का कारण बनता है, और इस संसार में आज जब आए हैं तो संसार में बंधन किस चीज़ का है ये जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत शांक्य योग का जो दर्शन है इसी में दूसरा अध्याय का जो पाठ पढ़ रहे हैं इसमें पूरा इसके बारे में समझाया कि संसार बंधन क्या है, संसार में क्या हो रहा है। हम लोग कभी कभी थोड़ा सा धन, थोड़ा सा संपत्ति, थोड़ा सा पदवी मिलने के बाद हम खुश हो जाते हैं, बस मेरा काम हो गया, मुझे दो बच्चे हो गए, मेरे घर में बहुत सुख सुविधा है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, बस हम खुश हो जाते हैं। लेकिन इतने पे नहीं होगा, ये कर्म बंधन आपको इतना ही नहीं है, इससे और कोई है, और वो गीता में समझाया गया है। और गीता में क्या समझाया गया है, ये संसार में जो जीव आया है उनको जिज्ञासु करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उसका मेरा संबंध क्या है, इस संसार में हम दुखी क्यों है, किस बात का दुख है। आप कहोगे किस बात का दुख है, हमारे पास काफ़ी पैसा है, हमारे पास बहुत सारे रिश्तेदार है, हमारा जन्म भारत में हुआ है, सब कुछ है, लेकिन दुख किस बात का है, तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है। जो दुख है वो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक, ये जो दुख है ये सभी को लगे हुए है, और ये दुखों से निवारण करने के लिए ही गीता का साक्षात्कार कर लेना चाहिए, कृष्ण भावनामय बनना चाहिए, और कर्म की गति को बारीकी से सोचना चाहिए। भगवद गीता के चौथे अध्याय में कहा होता है कर्मो गहना गति, ये जो कर्म है इसकी बड़ी ही बारीकी गहन गति है, इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को सावधान होकर कर्म के विषय में सोचना चाहिए। ये कर्म विकर्म अकर्म के बारे में लिखा, यहाँ पर प्रभुपाद विश्लेषण करते हैं कि आचार्यों का आदेश अनुसार जो कर्म करते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, अकर्म, कर्म कर्म कहते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम कर्म करते हैं तो ये हमें बंधन में नहीं बांधता है, लेकिन सावधानी से इससे भी ऊपर जाकर कर्म करना चाहिए, विशुद्ध सत्व में होकर कर्म करना चाहिए, तभी जाके तो उस कैसे किया जाए, विशुद्ध सत्व में कर्म कैसे किया जाए, इसलिए वो चौथा अध्याय के जो श्लोक है कर्म गहना गति, उसके प्रपोट में प्रोपार लिखते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक भौतिकवादी होते हैं, एक आध्यात्मिकवादी होते हैं। तो जो भौतिकवादी लोग है वो भी कर्म करते हैं, और आध्यात्मिकवादी लोग है वो भी कर्म करते हैं, और दोनों के कर्म में जमीन पाताल का आसमान का फर्क होता है, क्योंकि दोनों कर्म दिखाई पड़ते हैं सेम सेम, लेकिन वो सेम नहीं है, उसका परिणाम सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बताते हैं सिर्फ कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। तो फल देना तो भगवान के ही हाथ में है, वो कैसे फल होगा कौन जानता है, उनकी क्या इच्छा होगी कौन जानता है, और हम उनके सारे आदेशों का पालन करके ही कर्म कर रहे हैं, ये कैसे मालूम पड़ता है हमें। तो कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि आध्यात्मिक जीवन में जो उन्नति करना चाहते हैं वो कृष्ण भावनामय बनकर कर्म करते हैं, अर्थात 24 भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के लिए ही सब कुछ करते हैं। जैसे हमारे सामने एक पीले कपड़े पहने हुए बच्चे लोग हैं, वो अभी अभी एंट्री हुई है इनकी, और ये भक्त बने हुए अपना जीवन कृष्ण भावना में लगाया हुआ है। और उस बच्चे में से किसी को उठा के पूछा जाए कि भाई आज से 2 साल पहले तुम क्या करता था और किस प्रकार से तुम्हारी रहन सहन खान पान क्या था, वो कुछ और ही बताएगा। लेकिन जिस दिन से इस मंदिर में इसने प्रवेश किया है, गुरु का सानिध्य प्राप्त किया, वैष्णव की संगति प्राप्त की है, तभी से वो समझ सकते हैं कि वो क्या करते हैं। कर्म वही करते हैं, पराया उससे भारी कर्म करते हैं। कभी कभी लोग समझते हैं कि इसको आदमी भक्त बनने का मतलब लेजीनेस है। जो लोग संसार में काम नहीं कर पाते हैं या संसार में बराबर अपना एक्टिविटी नहीं करते, वो जाके साधु बन जाते हैं, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, है? आप लोग अपने काम धंधे में जाकर रात को 11 बजे आके सवेरे 10 बजे उठते हैं, लेकिन यहाँ के जो भक्त है वो सवेरे 2:30 बजे उठते हैं। कितने बजे? 2:30 बजे उठते हैं कि 2:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है और 2:30 बजे से ही भजन चालू करते हैं, और तो 2:30 बजे रात को 9 बजे तक फिर भजन करते हैं। और भजन करने का तरीका क्या है उनका, है 24 महाराज जब तक नहीं बैठते हो लोग, वो झाड़ू मारते हैं। मैं किसी भक्त को पूछा था 4 दिन पहले, क्या तूने घर में कभी झाड़ू मारा था? प्रभु जी बोला कभी नहीं मारता मैं। क्या कह रहा है? मैं कभी झाड़ू नहीं मारता मेरे घर में, ना मुझे माँ ने मारने दिया था, ना मैं मारता था झाड़ू। तो बोले, मैं पूछा कि अभी तुम झाड़ू मारा है कैसा लग रहा है? तो बोला बहुत आनंद आ रहा है मुझे, यहाँ पर झाड़ू मारने का आनंद बहुत आनंद आता है। वो भी कर्म है, भगवान के लिए सब्जी बनाना, भगवान के लिए कपड़े बनाना, भगवान की आरती करना, भगवान के सानिध्य में नाचना, भगवान के लिए भोग लगाना, पुजारी का सेवा करना, ये सारा ही सारा दिव्य कर्म है। यहाँ पर लिखते हैं कि वो कर्म जो है दिव्य है, वो सामान्य नहीं है। और उस कर्म का फल बंधन नहीं होता है, मुक्ति का कारण बनता है। यहाँ पर लिखा है लास्ट में प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि वो भक्त मुक्त हो जाता है जो कृष्ण भावना में अपना जीवन कृष्ण के चरणों में समर्पण करता है। क्योंकि भगवान ने बताया है गीता में, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ तभी तुम्हारी मैं मुक्ति कर दूंगा या पाप से मुक्त करूंगा, उससे पहले नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा काम इधर करे थोड़ा सा काम उधर करे, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए जो कर्म है उसकी गति को समझना चाहिए, बारीकी से समझना चाहिए। तो ये तो आध्यात्मिकवादी वादी जो भक्त है उनके बारे में सुनाया, और भौतिकवादी जो भक्त है, जो भौतिकवादी भक्त है वो क्या परिश्रम करते हैं, गधे के समान परिश्रम करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ये संसार जो है वो पवर्ग संसार है, हमें किसी अपवर्ग के संसार में जाना है। तो पवर्ग के संसार के लोग जो है वो प फ प भ म, ये 4-5 अक्षर है। इसमें विश्लेषण किया है कि परिश्रम ऐसा करते कि घोड़े के मुंह में जो फेस आता है ऐसा परिश्रम करते हैं। गधे के पीठ के ऊपर बहुत सारा सामान लाद दिया जाता है, गधा चलने नहीं आता फिर भी चल के जाता है, ऐसा परिश्रम करते हैं। और परिश्रम किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए। परिश्रम किसके लिए करते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए। इंद्रिय से तृप्त करने से क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? असत सुख मिलने वाला है, वास्तविक सुख नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला। विदिन आजकल का जो देखते हैं वातावरण है, इसमें माता पिता अपने बच्चे को बड़े प्यार से लाड से भूखे रहकर आध रात भर ना सो के उनको सुलाते हैं, उनको खिलाते हैं, वो बच्चे अपने माता पिता को हकाल देते हैं घर से बाहर। वो बच्चे को, बच्चे जो है माता पिता आका देता है, और वो बेचारे ने इतना परिश्रम करके बच्चे को बड़ा किया, इतना लिखा पढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन आज वो बच्चा हमको घर से बाहर निकाल दे रहा है या हमारी सेवा नहीं कर रहा है। पत्नी एक मिलने के बाद वो पत्नी के साथ अलग से रहना चाहता है, माता पिता को सेवा नहीं करनी है। मेरा एक लाइफ मेंबर है, उसके 3 भाई लोग हैं, उनके उनके माता पिता बेचारे वृंदावन में पड़े हुए हैं। वो तीनों भाई चार्टर अकाउंटेंट बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे हैं, पैसा उनके पास काफ़ी है, लेकिन माता पिता को साथ में नहीं रख सकते हैं। क्या है? हो सकता है कि वृंदावन में रहना अच्छा है, लेकिन उनको माता पिता को साथ में रखना चाहिए। अभी उनको आवश्यकता है बच्चे की सेवा की आवश्यकता है, लेकिन वो दो हस्बैंड अपने वृंदावन में रहते हैं, भगवान के स्थान में रहते हैं, अच्छा है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि पैसा तो देते हैं लेकिन अपने साथ में नहीं रखते। तो भौतिक संसार का जो सुख है वो सुख कैसा है? नाशवान है। वो सुख हमारे काम नहीं आने वाला है, ना हमारे साथ में जाएगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि कर्म गहना गति, कर्म को बारीकी से देखना चाहिए, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, और जो अभी जो कर्म कर रहे हैं उसके विषय में हमें क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये आपको समझना चाहिए। और कई बार शास्त्र में समझाया गया है कि इसका फॉर्मूला हमें सामने होता है, देखा गया है कि एक घर में दो बच्चे पैदा होते हैं, एक अमीर बनता है एक गरीब बनता है, एक ही जगह दो पेड़ लगाया जाता है, एक खट्टा होता है एक मीठा होता है। क्यों होता है? धरती में कुछ गड़बड़ी है क्या? माँ बाप में कुछ गड़बड़ी है क्या? नहीं, हमारा कर्म है, हमारा जो पूर्व जन्म का कर्म है वो आज हम भोग रहे हैं। अच्छे बच्चे, अच्छे फैमिली, अच्छा परिवार, अच्छा धन, ये पूर्व जन्म का है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी हमारा क्या कर्म हो रहा है? इसीलिए शास्त्र दोहराता है कि कर्म गहना गति, बारीकी से देखिए आप क्या कर रहे हो, बारीकी से देखना चाहिए। थोड़ी सी भी गलती होने से कृष्ण भावना का बंधन नहीं बनेगा, इसके बंधन में बंध के संसार में रहना पड़ेगा और पुनरपि जननी पुनर्जठरी, बार बार संसार में जन्म लेना पड़ेगा। और ये कैसा है? दुखदाई है। जन्म लेना कोई सीधी बात नहीं है। भागवत का थर्ड कैंटो पढ़िए, उसमें लिखते हैं देहूती और माता कपिल देव, सभी लोग वार्ता कर रहे हैं कि ये जन्म के बारे में कैसा प्रसिद्धि है। जन्म क्या चीज है? जब माँ के गोद में हम जब जाते हैं, 9 महीना माँ के पेट में जब रहते हैं, तो कितना कष्ट होता है वो जीव को इस संसार में आने के लिए। माँ नाभि के माध्यम से जुड़ी हुई है और वो बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। खट्टा खाती है, तिखा खाती है और प्रकार की चीजें खाती है, वो सारा बच्चे को परेशान करता है। लेकिन माँ क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती है। और ऐसे जघन्य कर्म को लेकर हम इस संसार में आए हुए हैं। संसार में आते ही हम रोना चालू कर देते हैं, जैसे ही पहला श्वास हो जाता है हम रोना चालू कर देते हैं। लेकिन संसार के लोग उस रोने को देखते नहीं है, वो दिवाली मनाते हैं, वो पेड़े बांटते हैं, वो पार्टी करते हैं, हमारा वंश लग गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे प्रकार से उसकी ये करते, लेकिन रो क्यों रहा है उसके बारे में कोई नहीं जानता है, वो रो क्यों रहा है उसके बारे में कोई जानने का प्रयास भी नहीं करता है। कितना कष्ट हुआ होगा 9 महीना उसके पास उल्टा टंगा हुआ है गोनी में, हमको आज आकर अगर हमको कोई गोनी में बांध दे तो कितना घंटा रह सकते हैं। लेकिन हम लोग 9 महीना रह के आए हैं, उस ताप को 9 महीना तक झेले हुए है, सभी लोग झेले हुए हैं। लेकिन संसार में आने के बाद सब कुछ भूल गए हैं, उसकी याद ही नहीं हमें। कोई साधु के मुकाबले में से जब सुनेंगे तो भी इधर से सुनेंगे तो छोड़ देंगे, हो गया काम। लेकिन ये सुनना और मनन करना बहुत जरूरी है कि संसार का जो दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें लगातार दुख है। आप मत समझिए कि इसी निवृत्ति होती है, जब तक आप मुक्त नहीं होते, जब तक कृष्ण भावनान भाव नहीं बनते हैं, जब कृष्ण माय नहीं बनते हैं, तब तक आपको भूख भुगतना पड़ेगा। भक्त भी भूख दुख भोगते हैं, भक्त भी मरते हैं, भक्तों को भी बीमारी आती है, लेकिन वो बीमारी का एहसास उन्हें नहीं होता है। वो अपने गुरु के मुकाम जो सुनते हैं कि भगवान हमारे इतने दयालु है, इतने दयालु है, स्वल्प शाप धर्म श्रोत्राए तुम हाथ भयो, जहां हमारा गला कटने वाला था वो हमारा उंगली कट गई। क्या कहते हैं भक्त? जहां हमारा गला कटने वाला था उधर उंगली कट गई, उंगली कटने से हम नहीं मरेंगे, नहीं। लेकिन भौतिक संसार के लोग इस बात को नहीं समझते हैं और पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अपने जीवन में भगवान ने क्या किया हमारे साथ, हमने क्या बिगाड़ा भगवान का, हमारे साथ कैसे क्या हुआ। मुझे याद आता है उस दिन की, जब मैं अमेरिका में था और गुजरात का जो भूकंप हुआ था, गुजरात में भूकंप हुआ था कच्छ में, तो उस कच्छ की जो भूकंप की जो गति थी वो बड़ी भयानक गति थी, वो बिल्डिंग के बिल्डिंग पूरा धस गई थी, अंदर गई थी, दो दो तीन तीन माला अंदर जमीन में गया था और लोग गायब हो गए थे। तब जहाँ हम लॉस एंजलिस में थे तो वहाँ पर भी वो कच्छ के ही लोग वहाँ पर काम करते थे, मेरे साला का जो दुकान है उसमें काम करते थे वो लोग। तो ये कुछ 9:30 बजे या कुछ 10 बजे का समय ऐसा कुछ जो भूकंप हुआ था, उस समय हम लोग एक जगह बैठे थे तो अचानक एक लड़के को फोन आया और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया और आपका पूरा परिवार समाप्त हो गया है, क्या बीता होगा लड़के के ऊपर। लेकिन वो लड़का भक्त होने के चलते बिल्कुल घबरा नहीं, क्योंकि हमारे साथ में था, प्रभुपाद का सानिध्य हमने प्राप्त किया था, तो घबरा नहीं बिल्कुल। लेकिन बाकी लोगों को क्या दशा हुई होगी, कैसे लोगों ने सोचा होगा उसके बारे में, हमारे पिता मर गए, माँ मर गई, हमारे भाई मर गए, बच्चे मर गए, सब कुछ खलास हो गया उधर। तो ये जो कर्म है ये कैसे है? सोचिए ना, रात को कितने लोगों ने सोचा कल हमारी बिटिया की शादी है, सारी तैयारी करनी चाहिए, आज हमारे गले में 1,00,000 रुपये की प्रॉपर्टी हुई है, कल हमको बैंक में डालना है, या कल हमारे बेटी के लिए वर देखने के लिए जाना है, सारी तैयारी की होगी वो लोगों ने। लेकिन भाई समय और काल ने किसी के हाथ में नहीं है, वो सब नहीं देख पाए, ना वो बैंक में गए, ना बेटे की शादी के लिए तैयारी किए, ना कुछ के, वो चले गए संसार से। तो ये है कर्म। इसलिए कर्म गहना गति, कर्म की जो गति है ये बड़ी ही गहन है, इसको सावधानी से सोचना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल जो दे मैं हूं और जो फल मैं अच्छा ही दूंगा आपको। अगर तुम कृष्ण भावनामय बन के कर्म करते हैं तो फल कोई खराब नहीं होगा आपके लिए, कभी नहीं होगा, क्योंकि भगवान सबके कैसे है, सुहृदम सर्वदेही नाम भोक्ताराम यज्ञ तपशम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वदेही नाम ज्ञात्वा मा शांति मुच्यते। वो सबके शुभ चिंतक है, वो कभी किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, किसी को कम ज्यादा नहीं कर सकते है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं कर्म का फल दे दूंगा आपको। लेकिन आप कभी मत सोचो कि ये कर्म मैंने किया है और मेरे द्वारा इसका फल मिलना चाहिए, ये गलत है। और मिल भी सकता है, सत्वगुणी लोग कहते हैं कि हमने अच्छा कर्म किया है, किसी के लिए कुआं खोदा है, किसकी शादी कर दी है, किसको बैल खरीद दिए हुए है, किसकी कुछ पैसा दिया हुआ है, ये सब बोलते हैं। लेकिन ये सब क्या है, इसे कहते हैं पुण्य कर्म। ये क्या कहते हैं, पुण्य कर्म है, इसका फल मिलेगा, चाहे पाप करो या पुण्य करो दोनों का फल आपको प्राप्त होगा। पाप किया होगा तो सो दुखदाई आपको भुगतना पड़ेगा, और पुण्य किया होगा तो सुख भोगना पड़ेगा, इसमें दो रहे नहीं है आपके लिए। तो जो भी चीज है वो गहनतम है, इसलिए जो पाप है वो जैसे सुख में दुख मिलता है तो पुण्य भी स्वर्ग तक लोग जाते हैं, स्वर्ग लोग जाते हैं और वहां से नीचे आना पड़ता है, भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं। जब तक आप भगवान कृष्ण की शरण नहीं लोगे गुरु के माध्यम से, तब तक आप इस भाव को नहीं समझ सकते हैं कि भगवान के यहाँ जाने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि ये एक इस हरे कृष्ण लैंड जैसे लाइक कि अम्बेसी है, क्या है ये, जैसे हम अमेरिका जाने के लिए एक अम्बेसी में जाना पड़ता है और वहाँ से वीज़ा प्राप्त करना पड़ता है, उसके सिवा प्लेन में नहीं बैठ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना पासपोर्ट पर स्टाफ आपका लग सकता है। तो ये जो हरे कृष्ण मंदिर है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये एम्बेसी है, यहाँ से अगर भागवत धाम जाना है तो आपको यहाँ आपको हाजिरी देनी पड़ेगी, इसके सिवा आप नहीं जा सकते हैं। तो कहोगे क्या 33 करोड़ देवता हमारे पास है, वो हमको नहीं लेके जाए क्या, इंद्र की चंद्र की सूर्य की आदि देवता की मैं पूजा कर रहा हूँ दिन रात से, मेरे माता पिता कहते हैं हमारे इष्ट देव है, वो पूजा करते करते आए हुए है, क्या वो क्या करेंगे हमको। तो कह रहे कि साफ साफ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा ना, बहुत भोग मिलेगा, बहुत आज के जो धनवान लोग हैं हमारे देश में उससे 1,00,000 गुना ज्यादा धन मिलेगा आपको। लेकिन धन समाप्त तो होगा, जैसे अमेरिका जाते हैं वीजा जैसे ही समाप्त तो होता है बैक टू इंडिया वापस आना पड़ेगा आपको, उस देश में नहीं रह सकते हैं, ये संसार की प्रति है। तो भगवत धाम में भी ऐसे ही है कि जब तक आप भगवत धाम जाने की तैयारी नहीं करते हैं तब तक भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। और भगवत धाम जाने के लिए क्या करना है, कलयुग में भगवान के नाम का जप करना है। बोलो सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही इसका पैसा है। ये पैसा पे करने से आपको वीजा पासपोर्ट मिलेगा तब आप भगवत धाम जा सकते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा त्यक्तम देह पुनः जन्म नहति मामेति स्वार्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम। हम भगवान के जन्म के बारे में, कर्म के बारे में, उनके लीला के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान दिव्य है, उनके कर्म भी दिव्य है, उनके जो कार्य का कार्यकलाप है वो भी दिव्य है। इसीलिए हम लोगों को भगवान का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरा धाम अलग है, ऐसे धाम नहीं है, स्वर्ग जैसा धाम नहीं है, इंद्र चंद्र वरुण जैसा धाम नहीं है मेरा धाम। मेरा धाम कैसा है? ना तद्भाषति सूर्य नाश शंक न पावका यद गत्वा निवर्तन्ति तद धाम परम मम। वहां चंद्र की आवश्यकता नहीं है, गोलोक वृंदावन में चंद्र नहीं है। हाँ, जाते हो गए कभी भगवान का दर्शन करने के लिए? देवता है इसलिए, लेकिन वह चंद्र की सूर्य की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप प्रकटित है। चिंतामणि धाम है भगवान का धाम, कैसा है? चिंतामणि है। हाँ, कल्पतरु है, वहां पर चूल्हा फूकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या चूल्हा फूके बिना पेट नहीं भरेगा, कोई भी व्यक्ति हो चूल्हा फूकना पड़ेगा, लेकिन वहां चूल्हा नहीं फूकना आपको। हाँ, सिर्फ नाचना है। हाँ, कैसे नाचना है? हाँ, कथा गान हम तो क्या, कौन सा श्लोक है वो, क्या बोलते हैं लास्ट में ब्रह्म संहिता का लास्ट श्लोक क्या है? नाट्यम गमनम गमनम। हाँ, वहां पर जो चलना है वो नाचना है, और बोलना है वो गीत गाना है। भगवान के धाम में जब कोई चलता है तो वो नाचता है, इसलिए यहाँ भक्त हमारे नाचते हैं भगवान के सामने, वो उसकी प्रैक्टिस चली है अभी। हमने जाना है ना भगवान धाम, जाना है तो जाने से पहले सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यहाँ नाचना पड़ेगा। हमारे पैर नहीं उठते हैं, कभी कभी देखा है मैंने छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो जानते भी नहीं है कि क्या है ये, किस लिए मेरे माता पिता मंदिर में लेके आए, लेकिन दोनों ताली बजा के खूब नाचते हैं बच्चे लोग। लेकिन हम 60 साल के हो गए, हमें नाचने की प्रवृत्ति, अरे शर्म लग रही, कोई देख रहा है क्या बाजू में क्या हो रहा है? मैं हरे कृष्ण मंदिर में नाच रहा हूँ, कोई मित्र तो नहीं देख रहा है? वो नहीं समझता है कि नाचे बिना एंट्री नहीं होगी भगवान के धाम में, गाये बिना एंट्री नहीं होगी भगवान के धाम में, क्योंकि भगवान का जो कार्यकलाप है वो दिव्य है, और इसको जब जीव करते हैं तो उसको वो वीजा पासपोर्ट मिल जाता है संसार जाने के लिए। ये जरूरी है, ये संसार दुखालयम संसार है, लेकिन हमें कहीं जाना है, क्योंकि हम संसार के नहीं है। इसीलिए महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज हुए, कितने लोग जानते हैं तुकाराम महाराज को, हाथ उठाइए तुकाराम महाराज को। अरे उनकी धरती पर सबको जानना चाहिए, पंडरपुर धाम है, और वो विठल भगवान है जो हमारे यहाँ पर खड़े हैं दोनों हाथ करीब पर टेक के, और उनके बाजू में तुकाराम महाराज बैठे हुए। तो तुकाराम महाराज भगवान की भक्ति किए, कैसे किए भक्ति? साकार रूप में भक्ति किए, निराकार रूप में भक्ति नहीं किए। कभी कभी हमारी धारणा होती है भगवान का रूप नहीं है, भगवान का हाथ नहीं है, भगवान का पैर नहीं है, भगवान खाते नहीं है, भगवान देखते नहीं, वो अंधे है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्त प्रमाणित करते हैं कि भगवान सब कुछ करते हैं, भगवान को देखते भी है, खाते भी है, लेकिन हम मुंह से खाते हैं, भगवान देख के खा लेते हैं, भगवान दिव्य है। तो तुकाराम महाराज जा रहे हैं, देहू बोल के एक स्थान है, आज भी तीर्थ स्थान है, हम लोग जाते हैं वहां पर दर्शन करते हैं, तो वहां पर कई ऐसे अभंग लिखे हुए हैं, उनमें एक अभंग लिखा हुआ है, हमी जातो आमचा गावा आमचा राम राम घेवा। देहू में जब तुकाराम महाराज कीर्तन कर रहे थे, उस समय एक पुष्प विमान आया, कीर्तन में ही आया। इतिहास में एक ही आदमी ऐसा है जो ईश्वर शरीर से भागवत धाम चला गया, भागवत में सुना है कि ध्रुव महाराज भी तो शरीर से चले गए भागवत धाम, जो मृत्यु मृत्यु के सर के पैर रख कर वो पुष्प विमान में चढ़कर चले गए। तो तुकाराम महाराज वहां बैठे लोगों को सबको कह रहे, चलो चलो चलो, कहाँ जाएंगे, हमारा कहा गंतव्य है? वो कहते हैं आमे आहो वैकुंठ वासी है, आलो ह्याज कारनासी, भजन करने के लिए आए थे, अब मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ, चलिए मेरे साथ चलिए। कोई भी नहीं गया, वो अकेले ही चले गए। तो भगवान धाम जाने के लिए हमें ये क्रिया करनी है, और कर्म जो है उसको सावधानी से समझ के करना है। कर्म जो विकर्म है ये तो बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है। हाँ, तो यश शास्त्र विधि उसी जा वर्तते काम कारत ना सुखम ना परम गति। भागवत गीता के 16वें अध्याय में बताते हैं जो लोग शास्त्र के विरुद्ध में जो कार्य करते हैं वो इस संसार में तो सुखी कभी हो ही नहीं सकते हैं, और ऊपर जाने के बाद भी है, या नरक में जाने के बाद या अन्य जगह पे जाने के बाद भी उनको सुख नहीं मिलता है। सुख नहीं मिलता है क्यों? क्योंकि कर्म जो है वो ऐसा करते हैं, जघन्य पाप करते हैं, और जघन्य पाप करने का उसका फल जो है वो बड़ा ही जघन्य होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए हम लोगों को ये भगवान की जो भक्ति है वो आचार्य के माध्यम से, गुरु के माध्यम से करना चाहिए। भगवद्गीता के 4वें अध्याय में भगवान ने कहा अर्जुन को कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदीक्षांति दे ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शनम। उन तत्वदर्शी के पास जाओ, वो तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने साक्षात्कार किया हुआ है। इसीलिए उनके सर नजदीक में जाकर प्रश्न पूछना है, सेवा करनी है, और सेवा के माध्यम से हम भगवान का भजन कर सकते हैं, क्योंकि सेवा ही ऐसी चीज है जो भगवान को अच्छा लगती है। अन्य चीजों में नहीं, योग ध्यान धारणा और बहुत सारे चीज है, लेकिन उससे भगवान इतने संतुष्ट नहीं होते हैं जितने सेवा से होते हैं। इसलिए हमें भगवान की सेवा करनी है, इस शरीर से सेवा करनी है। ये शरीर जो है नाशवान है, लेकिन शरीर के साथ में भगवान का भारी संबंध है। आत्मा परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में वास करते भगवान, और वो कहते कि ये शरीर मेरा है। बचपन में माता पिता कहते ये शरीर मेरा है, पत्नी कहती है ये शरीर मेरा है, इसी प्रकार बहुत लोग शरीर के दावेदार होते हैं, लेकिन ये शरीर किसी का नहीं है। ये नाशवान शरीर संसार में है, लेकिन आत्मा जो है वो शाश्वत भगवान के पास जाती है, और भगवान के आधार जो भगवत धाम जाने के बाद फिर संसार में नहीं आती है। त्यक्ताम देह पुनर्जन्म नहीं थी मामेती अर्जुना, इस संसार में फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा भजन करना चाहिए। और कलयुग में इस भजन को करने के लिए कोई भी कठिनाई नहीं है, कुछ भी कठिनाई नहीं है। करना क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, बस 4 नियम का पालन करना है जो शास्त्र ने बताया है। मांसाहार नहीं, जुगाड़ नहीं, नशा नहीं, और जो भी अविस्तार स्त्री संबंध है वो नहीं करना है, और भगवान के नाम का जप करना है। भगवान के नाम का जप करने के लिए क्या लगता है? कौड़ी पैसा खर्चा नहीं लगता है, जो भगवान ने जीवा दी है इसी से ही नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आपकी भक्ति हो गई। यही आपकी भक्ति है, इसके माध्यम से ही आपको भगवत धाम जाने का मौका मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, आज मिला हुआ है कल नहीं मिलेगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि ये शरीर मुझे पुण्याई से मिला, ये शरीर पुण्याई से नहीं मिला है, कभी इसे भ्रम में मत रहिए, ये भगवान की कृपा से मिला है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, बहुत सारे जीव भ्रमण कर रहे हैं, भगवान ने देखा कि जीव त्राही त्राही कर रहा है, अनेक जन्मों के बाद भटकते 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 घूम रहा है, चलो एक शरीर दे के देखते क्या करता है। और संसार में आप लोगों को भेजा है, हमें भेजा है संसार में लाके, अब उसका हम परिणाम कर्म के माध्यम से नहीं समझेंगे तो हमारी गति गलत हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों को समझना चाहिए, और इसीलिए भगवान साक्षात आते हैं ये दोहराने के लिए, ये कराने के लिए, ये समझाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और भजन करवाते हैं सारे जीवों को। पापी तापी जति छिलो हरि नाम में उधारी लो, जो भी पाप तापी जो लोग हैं वो हरिनाम के माध्यम से कलयुग में तर जाएंगे। तो जोर से बोलिए हाथ उठा के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान दर्शन दे रहे हैं, सभी खड़े होकर दर्शन करेंगे, प्रभुपाद जी कीर्तन करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।